الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم تسکین بہشتی زیور میں سے کتاب السلوک والاحسان پڑھ رہی ہیں. بہشتی زیور اصل میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیف کی ہوئی کتاب ہے، جس کو کہ ایک مدرسہ ہے کراچی کے اندر جامعۃ الرشید، ان لوگوں نے یعنی وہاں کے علماء نے اس کی تسہیل جو ہے کر کے پھر اس دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو چھاپا ہے. تو میں نے چیک تو نہیں کیا ہے کہ اس والی کتاب کے اندر کوئی انہوں نے تسہیل کری ہے، کچھ اپ ڈیٹس کری ہیں یا نہیں کری ہیں، لیکن جو موضوع ہے یعنی جو مضمون ہے کتاب السلوک والاحسان، تو اس سے یہی گمان ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایسے ہی لکھا ہوگا جیسے کہ تسہیل کے اندر موجود ہے. یعنی بہشتی زیور میں بھی یہی الفاظ ہوں گے کم و بیش جیسے کہ تسہیل بہشتی زیور کے اندر موجود ہیں. بہرحال، تو کتاب السلوک والاحسان اور اس کے اندر اخلاق ذمیمہ اور ان کا علاج کا موضوع ہم پڑھ رہے ہیں، اور آخری جو ہم نے اس میں عنوان پڑھا تھا وہ دنیا کی محبت اور اس کا علاج تھا، اور یہ بھی مکمل چونکہ نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے عاجز شروع سے ایک بار پھر پڑھ لیتا ہے کہ دنیا کی محبت اور اس کا علاج کے تحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا تھا کہ مال کی محبت ایسی بری چیز ہے کہ جب یہ دل میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت اس میں نہیں سماتی، کیونکہ ایسے شخص کو تو ہر وقت یہی فکر رہے گی کہ مال کس طرح آئے اور کیوں کر جمع ہو. اتنی چیزیں ہو جائیں، ایسا گھر بنانا چاہیے، باغ لگانا چاہیے اور جائیداد خریدنا چاہیے. جب دن رات دل اسی میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت کہاں ملے گی. ٹھیک ہے، تو جو محبت ہے یہ تو ایک جذبے کا نام ہے، اور یہ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور جو سوچیں ہوتی ہیں اور فکریں ہوتی ہیں یہ دل میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو دماغ میں ہوتی ہیں، ذہن میں ہوتی ہیں. لیکن ذہن میں جو سوچیں ہوتی ہیں، جس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں، ان کا اثر انسان کے دل کے جذبات کے اوپر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، دل کے جذبات کے اوپر ان کا اثر پڑتا ہے، اور یہ وائس ورسا بھی ہوتا ہے. دل کے جذبات کا سوچوں کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، اور سوچوں کا دل کے جذبات کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہینڈ ان ہینڈ، ہاتھ در ہاتھ، یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے کیا چیز آتی ہے؟ پہلے سوچیں آتی ہیں کہ پہلے جذبات آتے ہیں؟ تو یہ ایسے ہی ایک سوال ہے کہ جیسے کہ کوئی پوچھے کہ پہلے انڈا آتا ہے کہ پہلے بچہ آتا ہے، چوزا آتا ہے پہلے کہ پہلے بچہ آتا ہے؟ تو پہلے انڈا آئے گا، پھر اس میں سے چوزا نکلے گا، پھر چوزا بڑا ہوگا، پھر چوزا جو ہے وہ مرغی بن جائے گا، پھر مرغی جو ہے وہ مرغے کے ساتھ پھر اس کی شادی ہوگی، اور اس کے بعد پھر وہ انڈا دے گی. ٹھیک ہے، تو مرغی ہوگی تو انڈا آئے گا، اور انڈا ہوگا تو مرغی آئے گی، تو پہلے کون سا آیا؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک دفعہ اپنے حضرت سے یہ سوال کیا. ٹھیک ہے، کہ پہلے مرغی کے پہلے انڈا، تو حضرت نے بھی بڑا زبردست جواب دیا، اور 100% وہی جواب ہے کہ ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ پہلے مرغی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو کیا یقین رکھتے ہیں کہ پہلے مرغی ہوتی ہے، مرغی سے جو ہے وہ انڈا آتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس بات کی تعویل کیا ہے یا اس بات کی تشریح کیا ہے کہ پہلے مرغی ہوتی ہے پھر انڈا آتا ہے؟ پہلے انڈا ہوتا ہے پھر مرغی نہیں آتی، بلکہ پہلے مرغی ہوتی ہے پھر انڈا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا کا ایک بہت بڑا جو ایک معمہ ہے نا کہ دا چکن کمز فرسٹ اور دا ایگ، تو الحمدللہ ہمارے مشائق نے اس دنیا کے بڑے معمے کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیا کہ پہلے تو مرغی آتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سوچتے رہیں کہ کیسے. चले हम आगे पढ़ते हैं कि अल्लाह को याद करने की फुर्सत कहाँ से मिलेगी। ठीक है, अगर इंसान मसरूफ रहेगा तो ये जो मसरूफियत है ना, ये मसरूफियत जो है वो इंसान के अपने हाथ में होती है। अपने इंसान अपने हाथ अपने आप को मसरूफ करके रखता है। ठीक है, इल्जाम दूसरों को देता है कि दूसरों ने मुझे मसरूफ किया हुआ है, लेकिन हकीकत क्या होती है कि उसके पास फुर्सत के बहुत सारे औकात होते हैं, लेकिन उन फुर्सत के औकात को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो लगा देता है। ठीक है, ठीक है, जिम्मेदारियां भी होती हैं, काम भी होते हैं, मशगूलियतें भी होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसको फुर्सत नहीं मिल रही होती है, लेकिन ये 24 घंटे का मामला नहीं होता। उसके दिन के 24 घंटे ऐसे नहीं होते, बल्कि दिन के अंदर कोई 10 घंटे मसरूफ रहेगा, कोई 5 घंटे मसरूफ रहेगा, कोई 15 घंटे मसरूफ रहेगा। ठीक है, लेकिन फुर्सत के औकात भी होंगे उसके पास, तो इस वजह से इंसान इसका खुद कसूरवार होता है कि उसने अपने आप को अल्लाह की याद के लिए फारिग क्यों नहीं किया। एक बुराई उसमें यह है कि जब दिल में उसकी मोहब्बत जम जाती है तो मरकर अल्लाह के पास जाना उसको बुरा मालूम होता है, क्योंकि ये ख्याल आता है कि मरते ही ये सारा मजा छिन जाएगा। ठीक है, अब ये दुनिया की मोहब्बत की जो जो असरात होते हैं उसके ऊपर, उसकी जिंदगी के ऊपर, तो वो एक एक करके बयान कर रहे हैं कि मरना जो है ना, फिर उसको अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद दूसरी बुराई इसमें यह है कि जब आदमी दुनिया समेटने के पीछे पड़ जाता है तो उसको हलाल हराम का कुछ ख्याल नहीं रहता। ठीक है, कि ये दुनिया हलाल तरीके से आ रही है कि हराम तरीके से आ रही है, इतना फिर इन्वेस्टिगेशन करना जो है ना, वो उसके लिए मुमकिन नहीं रहता। अपने और दूसरे के हक में फर्क नहीं रहता, ना झूठ और धोखे की परवाह होती है, बस यही नियत रहती है कि कहीं से आए और हम उसको समेटें। चुनाचे हदीस में आया है कि दुनिया की मोहब्बत सारे गुनाहों की जड़ है, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ले खतियातिन। जब ये ऐसी बुरी चीज है तो हर मुसलमान को कोशिश करना चाहिए कि इससे बचे और अपने दिल से इस दुनिया की मोहब्बत निकालने की कोशिश करे। ठीक है, चाहिए यानी ये पहले बुराई बयान फरमा दी इसकी। ठीक है, कबाहत किसी चीज की जब हमारे जहन में पैदा हो जाती है, उसकी कराहियत पैदा हो जाती है, तो अब हम उसको दूर करने की फिक्र करते हैं ना। ठीक है, अगर किसी चीज को हम बुरा समझते ही नहीं हैं तो फिर उसको दूर करने की फिक्र भी हमारे अंदर नहीं हो सकती। इस वजह से सबसे पहला काम जो करना होता है वो किसी बुरी चीज को बुरा साबित करना होता है। ठीक है, कि ये बुरा है और ये नुकसानदेह है, फिर उसके बाद बात आती है कि अब इस बुराई से कैसे बचा जाए। ठीक है, तो हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल ऐसे ही मामला किया कि पहले बुराई को साबित किया उसकी उसके नुकसानात बयान करके, अब उसके बाद बता रहे हैं कि कैसे दूर करना है। कहते हैं कि जब ये ऐसी बुरी चीज है तो हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए। भाई अब नाउ यू आर कन्विंस्ड, ठीक है ना, नाउ आर वी ऑन द सेम पेज नाउ। ठीक है, यानी गोया के कह रहे हैं कि अब तुम हमसे मुत्तफिक हो कि हाँ इसको दूर करना चाहिए। ठीक है, तो अब जो है ना वो हम आपको बताते हैं कि कैसे दूर करना चाहिए यानी इलाज। तो फरमाते हैं कि उसका एक इलाज तो ये है कि मौत को कसरत से याद करें और हर वक्त सोचे कि ये सब कुछ एक दिन छोड़ना है। ठीक है, मौत को याद करे, बेशक उसके लिए मुराकबा मौत उसको करना पड़े। ठीक है, यानी आंखें बंद करके सर को झुका करके सोचे कि मैं मर चुका हूं। ठीक है, और अब जो है ना मुझे गुसल दिया जा रहा है, अब मुझे नमाज जनाजा के लिए ले जाया जा रहा है, और नमाज जनाजा के बाद जो है मुझे कब्रिस्तान के लिए लेके जाया जा रहा है। मेरे इर्द गिर्द जो है वो मेरे दोस्त रिश्तेदार अजीज अकारिब जो है वो साथ चल रहे हैं और मेरी मीयत को कब्रिस्तान लेके जाया जा रहा है। और उसके बाद फिर कब्रिस्तान में पहुंच गया हूं और वहां पर एक कब्र मेरे नाम की खुदी हुई है और मुझे उसके अंदर उतारा जा रहा है, और फिर उसके बाद मेरे ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। ठीक है, सिले रख दी गई हैं और सिले मेरे ऊपर रखने की वजह से बिल्कुल घटा टूप अंधेरा छा गया है कब्र के अंदर, घटा टूप अंधेरा यानी अब रोशनी आने की कोई जरिया ही नहीं रह गया। तीन तरफ से तो कब्र वैसे ही बंद होती है ना, रोशनी तो नहीं आ सकती। फिर ऊपर से जब उसके ऊपर सिले रख दी जाती हैं, अब कहाँ से रोशनी आएगी। अच्छा, सेलों के अंदर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं ना, तो उन सुराखों को जो है वो क्ले से, गीली मिट्टी से बंद कर दिया जाता है। आप खवातीन हैं, आप तो कब्रिस्तान जाकर के ये दफन का पूरा मरहला नहीं देखती होंगी, लेकिन मर्दों को तो ये देखने का मौका मिलता है। तो इस वजह से किसी मर्द से पूछ लेना चाहिए, या ये आजिज जो है वो आपको तस्वीर कशी करके बता रहा है कि जो सिलों के दरमियान सुराख होते हैं उनको गीली मिट्टी से खूब सारा लेप लगा करके उन सुराखों को भी बंद कर दिया जाता है। अब उसके बाद रोशनी तो वैसे ही बंद हो गई, तो बिल्कुल तारीकी के अंदर इंसान पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इस वक्त तक जो है ना, वो उसकी रूह उसके जिस्म के अंदर वापस भी आ चुकी होती है कि अगर कोई सोच रहा हो कि अच्छा वो तो खाली मेरा जिस्म पड़ा हुआ हो, खाली मेरा जिस्म नहीं, आपका जिस्म नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल ऐसी ही होंगी जैसे अभी है। अभी क्या है, रूह और जिस्म दोनों का मजमुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से उस वक्त भी रूह और जिस्म दोनों एक साथ कब्र के अंदर होंगे, ठीक है। सिर्फ इतना फर्क होगा कि इस वक्त हम इस रूह की मदद से हिलजुल सकते हैं, अपने हाथ को हिला सकते हैं, अपनी जुबान को हिला सकते हैं, अपनी आंख को हिला सकते हैं, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने ये सलाहियत वापस ले ली होगी। उस वक्त रूह मौजूद होगी बदन के अंदर, देख सकता होगा और सुन सकता होगा, ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता होगा, कुछ कह नहीं सकता होगा, ठीक है। तो इसको मौत का मुराकबा कहते हैं, यानी इस तरीके से सोचे। फिर उसके बाद दूसरा भी तरीका होता है मौत को याद करने का, कि किसी के मरने की खबर मिले या किसी के मरने की के खबर को देखे, टीवी के ऊपर देख रहा है आजकल जो है वो, सेलफोन के अंदर टीवी मौजूद होती है, हर एक के पास ही मौजूद है ये। तो इस तरीके से जब कभी भी कोई खबर आए तो उस वक्त जो है ना, वो अपनी तवज्जो को थोड़ी देर के लिए मौत की तरफ ले जाए कि भाई वो अगर मर गया तो फिर मैंने भी तो मरना है, ठीक है। खाली उसने तो नहीं मरना था, रिश्तेदारों ने तो नहीं मरना था, बूढ़ों ने तो नहीं मरना था, जवानों ने भी मरना होता है, बूढ़ों बच्चों ने भी मरना होता है, तो मैंने भी एक ना एक दिन मर जाना है। तो फरमाते हैं कि इसका इलाज सबसे पहला क्या है, कि मौत को कसरत से याद करें और हर वक्त सोचे कि ये सब कुछ एक दिन छोड़ना है। फिर उसमें दिल लगाने का क्या फायदा, बल्कि जिस कदर ज्यादा दिल लगेगा उसी कदर छोड़ते वक्त हसरत होगी, ठीक है। इंसान जो है ना, वो अपने दिल को वॉच करता रहे, अपनी अकल को इस्तेमाल करके अपने दिल को वॉच करता रहे, दिल का मुराकबा करते रहे। मुराकबा करने का मतलब होता है वॉच करना, किसी चीज को गार्ड करना। पिछले दिनों हम जंग गए हुए थे, हमारे हजरत के का इज्तिमा था, नक्शबंदी इज्तिमा, तो वहां पे खाना खाने के लिए एक दफा बैठे तो हमारी टेबल के ऊपर ना, वो हजरत के जो बॉडी गार्ड होते हैं ना, वो भी आकर के बैठे हुए थे, और एक पुलिस वाला भी आके बैठा हुआ था, वो भी इज्तिमा की सिक्योरिटी के इंतजाम करने वाले। तो जो बॉडी गार्ड साहब थे तो वो कहने लगे कि तो हमें तो मुराकबा करने का टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले जो है ना वो इजाजत खिलाफत वाली मजलिस हुई थी, जिसमें बहुत सारे जो लोग होते हैं, उलमा मशायख, मतलब उनको इजाजत खिलाफत दी जाती है। तो जब उनका नाम अनाउंस किया जा रहा होता है ना, तो नाम अनाउंस करने वाले कहते हैं कि ये रोजाना 3 घंटे मुराकबा करते हैं, और ये रोजाना 7 घंटे मुराकबा करते हैं, और ये इतना मुराकबा करते हैं और इतना मुराकबा करते हैं, तो इनको आज इजाजत खिलाफत दी जा रही है, ठीक है। तो वो जो गार्ड साहब थे वो जरा मजाकिया अंदाज में कहने लगे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, हम तो हर वक्त गन उठा करके जो है ना वो बस खड़े रहते हैं, और हम तो हर वक्त जो है ना वो बस अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहते हैं, तो हमें तो मुराकबे का वक्त ही नहीं मिलता। तो इस आजिज ने कहा कि आप तो सबसे ज्यादा मुराकबा करते हैं। मैंने कहा कि आप तो सबसे ज्यादा मुराकबा करते हैं, इसलिए कि मुराकबे का मतलब ही होता है गार्ड करना, वॉच करना, ठीक है। तो फिर उनको बताया भी कि भाई सऊदी अरब के अंदर जो है ना वो सड़कों के ऊपर लिखा हुआ होता है, अत्तरीक मुराकब बिल रिदार या मुराकब बिल कैमरा, कि ये जो हाईवे है, ये जो सड़क है, ये कैमरे से वॉच की जा रही है, या ये रिडार के जरिए से वॉच की जा रही है, ठीक है। तो अगर किसी ने ओवर स्पीडिंग करी तो उसको टिकट लग जाएगा, यानी उसको जो है वो वायलेशन लग जाएगी। ठीक है, तो मुराकबे का मतलब होता है वॉच करना, गार्ड करना, हत्ता के जो साहिली बीचेस होते हैं, समंदर के बीच जो होते हैं ना, साहिल समंदर, तो वहां पर लोग नहाने के लिए जाते हैं, खुसूसन ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा उनके यहाँ स्विमिंग वगैरह का रिवाज है, तो वहां पर उन्होंने वॉच गार्ड्स के जो है ना वो टावर्स बनाए हुए होते हैं। ठीक है, तो वो जो टावर्स होते हैं, अगर कोई अरब मुल्क है तो उसके ऊपर भी ये लिखा होता है मुराकबा, इसके ऊपर बैठ करके जो वॉच गार्ड होता है वो मुराकबा कर रहा होता है, यानी वो पूरे के पूरे बीच को वॉच कर रहा होता है कि कहीं कोई जो है ना वो नहाने में कोई डूबना ना शुरू हो जाए, तो मुझे जा करके उसको बचाना पड़े। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें भी अपने जो जज्बात और कैफियात होती है ना, इनको वॉच करना पड़ता है। और कैसे वॉच करते हैं? जहन से वॉच करते हैं, अकल से वॉच करते हैं। ठीक है, हर वक्त देखते रहें कि भाई इस किस्म की कैफियात मेरे दिल के अंदर तो नहीं आ रही हैं, कि किसी की मोहब्बत जो है ना वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, किसी चीज की मोहब्बत या किसी इंसान की मोहब्बत जो है ना वो बढ़ती चली जा रही है। तो अगर ऐसा कोई मसला हो रहा है तो उसी वक्त जो है ना वो इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दे और मौत को सोचना शुरू कर दे कि ये जो मोहब्बत बढ़ रही है ये मेरे साथ नहीं रहेगी, ठीक है, ये मेरे साथ नहीं रहेगी, मुझे एक ना एक दिन इससे छोड़ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। हमारे मशाइख के यहाँ एक बहुत ही प्यारा जुमला मशहूर है, फरमाते हैं कि जिसने मखलूक से मोहब्बत करी, जिसने मखलूक से मोहब्बत करी वो एक ना एक दिन मखलूक से जुदा कर दिया जाएगा, यानी मौत, मौत के वक्त वो मखलूक से अपने महबूब से जुदा कर दिया जाएगा। जबकि इसके बरअक्स जिसने अल्लाह से मोहब्बत करी, जिसने अल्लाह से मोहब्बत करी वो एक ना एक दिन अल्लाह से मिला दिया जाएगा। ये दोनों ऐसी हकीकतें हैं कि जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी से तो काफिर इनकार कर सकता है, जो कि आखिरत का मुनकिर है वो तो इनकार कर सकता है, लेकिन पहली हकीकत से तो काफिर भी इनकार नहीं कर सकता, राइट? पहली हकीकत से तो काफिर भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मौत का कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो इस तरह से इंसान देखता रहे कि मेरे दिल में किसी चीज की मोहब्बत इतनी तो नहीं बढ़ रही कि उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं हो रहा हो। फरमाते हैं कि जिस कदर ज्यादा दिल लगेगा उसी कदर छोड़ते वक्त हसरत होगी। दूसरा ये कि ताल्लुकात ज्यादा ना बढ़ाए, जरूरत से ज्यादा सामान और जायदाद वगैरह जमा ना करे, ना इंसानों के साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश करे और ना जो है वो चीजों के साथ ज्यादा दिल लगाने की कोशिश करे। कुर्ब जितना करीब होगा, चीजों को अपने करीब लेकर के आएगा, उतना ज्यादा उन चीजों के साथ जो है वो मोहब्बत पैदा होगी। गर्ज मालो असबाब मुख्तसर रखे, ठीक है, कम रखे, दूसरों के मुकाबले में अपने पास कम होना चाहिए। ठीक है, मर्दों को वैसे भी बहुत ज्यादा शौक नहीं होता चीजें जमा करने का, लेकिन औरतों को घरदारी की वजह से और घरस्थी की वजह से और घर का ख्याल रखने की वजह से औरतों के यहाँ चीजें जमा करने का जरा ज्यादा रिवाज होता है। ठीक है, तो उसका बिल्कुल इनकार नहीं किया जा रहा, बिल्कुल मना नहीं किया जा रहा कि नहीं कोई कोई चीज घर में नहीं लेकर के आए, कोई चीज खरीद के नहीं लेकर के आए, बल्कि एक एतदाल रखें इसके अंदर। जो दुनिया परस्त लोग हैं ना, ठीक है, जो दुनिया परस्त लोग हैं, जो कि मौत का या तो इनकार करने की कोशिश करते हैं या मौत से बिल्कुल ही गाफिल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो दीनदार जो इंसान होता है ना वो अपने आप को उनसे कम रखे। ठीक है, एक एक फर्क होना चाहिए दीनदार में और दुनियादार में। ठीक है, तो बस ये समझ लें कि हमारा ये स्टैंडर्ड है, यानी मतलब व्हाट व्हाट विल डिसाइड कि आपके पास कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, हाउ विल यू डिसाइड दैट? ठीक है, तो ये देखे कि भाई अगर मैं दीनदार हूं और दीन की बात करता हूं या दीन की बात सीखता हूं, ठीक है, तो मुझ में और दुनियादार के दरमियान फर्क होना चाहिए। उसके पास जिस तरह की दुनिया इकट्ठी हुई हुई है तो उस तरह की मैं इकट्ठी ना करूं, लेकर के नहीं आऊं। ठीक है, अलबत्ता इतना तो दुनिया समेटने का जो एक मफहूम समझा जाता है ना, वो ये होता है कि जा करके दुनिया को ले करके आना। और ये कहाँ से लेकर के आते हैं? बाजारों से लेकर के आते हैं, ठीक है। आजकल जो है वो घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके भी लेकर के आते हैं, ठीक है। तो अगर दुनिया खुद आ रही है तो उसको भी देने दिलाने की कोशिश करें, लेकिन उसमें भी इतना ज्यादा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दुनिया अगर खुद चल करके आ रही है तो उसको देने दिलाने की फिक्र करे, और अगर देने दिलाने के अंदर भी बहुत ज्यादा वक्त का उसका जाया हो रहा है ना, तो अपने काम से काम रखे, अपने काम के अंदर लगे, ठीक है। अपने दिल को दुनिया से पाक रखे और अपने काम के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे, ठीक है। यहां पर जिस दुनिया समेटने की बात हो रही है, ये वो कि दुनिया की मोहब्बत की खातिर जा जा करके दुनिया को लेकर के आता है, ठीक है। ये बात क्यों कही जा रही है? ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो मशायख होते हैं ना, ठीक है, वो फिर लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहे होते हैं, ठीक है। अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में होती है, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देते हैं। तो अब जो है ना, लोग उनको फिर हदीये तहाइफ ला ला करके बहुत देते हैं, हदीये तहाइफ, ठीक है ना। इतनी उनको समझ नहीं होती लोगों को, लोग जो है वो बेचारे यानी कम अकल कम समझ, तो वो समझते हैं कि हम जो है ना वो चीजें खरीद खरीद करके जो है ना वो अपने मशायख को देंगे, तो हम जो है ना वो मशायख की दुआओं के ज्यादा मुस्तहिक बन जाएंगे, ठीक है। ये लोगों की कम अकली होती है और यानी सोच की खराबी होती है। लेकिन आप हर बंदे को इस तरीके से इतना पढ़ा नहीं सकते, बल्कि पढ़ाते भी हैं लेकिन लोग सुनते नहीं है, ठीक है। लोग गौर नहीं करते, जिस तरह तकवा की बातों के ऊपर गौर नहीं करते, उसी तरह इस बात के ऊपर भी गौर नहीं करते, ठीक है। कि भाई ये जो चीजें आप ला ला करके मशाया के घरों के अंदर ढेर कर रहे हैं, तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं ना कि अब आप उसको करें जो आपको करना है, आप अपना वक्त इन चीजों के ऊपर लगाएं, इनको ठिकाने लगाने के ऊपर आप अपना वक्त लगाएं, आप इनको की फिक्र करें, आप जाने, आपका काम जाने। हमने तो ला करके डंप कर दिया है आपके पास, हमने तो ला करके जो है ना वो डंप कर दिया आपके घर के अंदर। एक दफा कोई बताने लगा, हमारे घर वालों को बताने लगा कि हजरत के किसी कोई तकरीब थी कोई बच्चे बच्चे की, तो एक खिलौना जो के बाजार में उस वक्त नया नया आया था, ठीक है, पता नहीं कितने लोग, 50 शायद शायद 50 लोग जो है ना वो खिलौना ला करके उन्होंने हजरत के घर में ला करके रख दिया, ठीक है। अब वही एक खिलौना जो है ना वो 50 की तादाद में उनके घर में पड़ा हुआ है, अब क्या करें भाई, ठीक है। तो इस किस्म की बेवकूफियां लोग करते रहते हैं, नहीं करना चाहिए इस तरह से ना। अगर आपको इतना ही बहुत बहुत ज्यादा मोहब्बत है, तो भाई कोई ऐसी चीज है जिससे उनकी जरूरत पूरी हो सके, राइट, उनके काम आ सके, उनकी जरूरत पूरी हो सके, तो या तो कोई तलाश करें कि भाई इनकी काम इनका इनकी जरूरत किस चीज के अंदर है, ठीक है। या अगर आपको नहीं पता चल सकता है कि क्या जरूरत है, तो भाई कैश दे दें, कैश जो है वो अपनी जरूरत भी पूरी कर सकते हैं, दूसरों की जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं। लेकिन डंप करना होता है ना, सामान ला करके डंप करना होता है। अब भुगतो तुम, अब आप उसको ठिकाने लगाएं, अब यानी आप अपना इल्म का काम छोड़ें, आप अपना जिक्र का काम छोड़ें, आप लोगों के जो है वो रहनुमाई का काम छोड़ें, और आप चीजों को मैनेज करने के अंदर लग जाएं, ठीक है। और म्यूट कर लें, आपकी खांसी सुनने का मेरे को शौक नहीं हो रहा। अच्छा, इसके बाद फिर फरमाते हैं कि ताल्लुकात ज्यादा ना बढ़ाएं, जरूरत से ज्यादा सामान और जायदाद वगैरह जमा ना करें, गर्ज माल और असबाब को मुख्तसर रखें। तीसरे ये कि फजूल खर्ची ना करें, क्योंकि फजूल खर्ची करने से आमदनी की हिर्स बढ़ती है और हिर्स से सब खराबियां पूरी होती हैं, ठीक है। फजूल खर्ची खुद जो है वो इसराफ, एक गुनाह कबीरा है, इसराफ करना, फजूल खर्ची जिसको उर्दू में कहा जाता है। और फिर इसका गुनाह कबीरा का असर होता है ना, ठीक है, गुनाह करता है इंसान तो गुनाह का असर उसकी जिंदगी के अंदर आता है। तो असर क्या आता है इस फजूल खर्ची का, के मजीद आमदनी की हिरस बढ़ती है, क्योंकि इसको फजूल खर्ची की लत लगी हुई है, तो भाई कहाँ से खर्चा आएगा तो फजूल खर्ची करेगा ना, तो खर्चा बढ़ाने की इसको फिक्र लगी रहती है। चौथा ये कि मुतवस्सत खाने कपड़े की आदत डाले, ठीक है ना। हर वक्त एक ब्रांडेड किस्म का कपड़ा चाहिए, है ना। आजकल दीनदारों के लिए एक अच्छा जो है वो इंतजाम हो गया है, जे डॉट, ठीक है, जे डॉट। जे डॉट का मतलब यह है कि जी अब तो ये बस कोई इसके अंदर लिमिट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मौलवी साहब का बनाया हुआ ब्रांड है, ठीक है ना, जुनेद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। ठीक है, तो क्योंकि मौलवी साहब ने एक ब्रांड बना दिया, अब सारे दीनदार जो है ना वो जे डॉट के कपड़े खरीदेंगे, और इतना खरीदेंगे कि जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई जे डॉट का मतलब ये तो नहीं था कि आप जो है वो इतना खरीदेंगे जिसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो दुनियादारों के लिए जो है वो गुल अहमद और दूसरे किस्म की लोने मौजूद थी, और दीनदारों के लिए ये आज दीनदार वाली लोने आ गई हैं। ठीक है, तो कपड़े के अंदर भी जो है वो मुतवस्त नहीं बल्कि सबसे ज्यादा महंगी चीज आकर के खरीदनी है, और खाने के अंदर भी बहुत ही ज्यादा जो लैविश किस्म के, बल्कि कराची के अंदर तो हमने देखा कई सालों से है, आप तो जानते होंगे कराची वाले के रेस्टोरेंट्स के नाम ही लैविश लैविश रेस्टोरेंट है भाई। ठीक है, उनको भी पता है कि इन बेवकूफों ने आकर के लैविश रेस्टोरेंटों के अंदर ही खाना खाना है, तो हमने नाम ही रख दिया ताकि हमारी रेस्टोरेंट में आकर के खाना खाए। ठीक है, तो लैविश रेस्टोरेंट्स के अंदर जाकर ये खाना खाए भाई, अल्लाह के बंदे। मसला सारा का सारा क्या, ये जो मैकडोनल्ड्स का है, मैकडोनल्ड्स वैसे तो सबसे घटिया किस्म का रेस्टोरेंट होता है अमेरिका के अंदर, जो होमलेस लोग होते हैं ना वो मैकडोनल्ड्स में जाकर के खाना खाते हैं। ठीक है, लेकिन कम्यूनों ने पाकिस्तान के अंदर क्या सेटअप किया हुआ होता है कि जो उनके डॉलर डॉलर के अंदर जो उनके बर्गरों के रेट्स होते हैं ना, वही कन्वर्ट करके जितने रुपए बनते हैं उतना उन्होंने कीमत रखी हुई होती है पाकिस्तान के अंदर। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो पिज्जा हट भी जंक फूड है भाई, और बर्गर तो और भी ज्यादा जंक फूड है, लेकिन चूंकि महंगा ज्यादा होता है और अमेरिका का उसके अंदर एक लेबल लगा होता है, इस वजह से जो है वो इस कॉम ने जाकर के पिज्जा हट के सामने लाइनें लगा दी, और मैकडोनल्ड्स के सामने लाइनें लगा दी, और केएफसी के सामने लाइनें लगा दी, है ना। अब जो है वो जब बच्चे मर रहे हैं फलस्तीनियों के, तो अब जो है वो उसका बायकॉट करने की जरूरत पेश आ रही है। ठीक है ना, अल्लाह के बंदे तुम पहले क्यों जा रहे थे यहाँ पर, तुम पहले जा क्यों रहे थे मैकडोनल्ड्स और केएफसी और पिज्जा हट। ठीक है, तो मुसीबतें हम लोग खुद पालते हैं, उसके बाद फिर उनका बायकॉट करने की जो है वो तमाशे खड़ा करते हैं, फिर तो थोड़े दिन के बाद ये सब बायकॉट बायकॉट खत्म हो जाता है। अभी क्यों चल रहा है बायकॉट इतने दिनों से, क्योंकि वहां की बमबारी की खबरें जो है वो तस्वीरें वीडियोज मुस्तकिल आई चली जा रही हैं, राइट, मुस्तकिल आ रही हैं, इस वजह से बायकॉट अभी तक चल रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की शान में जब वो गुस्ताखी करते हैं, जब कार्टून बनाते हैं, वो ज्यादा बुरी चीज है एक ईमान वाले के लिए या मुसलमान की जान का जाना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू ज्यादा अहम है कि बच्चों का मरना? ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू के ऊपर वो हमला करते रहते हैं, और उसके ऊपर हम उनकी प्रोडक्ट्स का अगर बायकॉट करते हैं तो थोड़े दिन में खत्म हो जाता है, सब भूल जाते हैं, और फिर सब बैक टू नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो आती ना हमारे पास, तो हम जो है वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उल्टी सीधी किस्म की हरकतें, है ना। तो खुद जो है वो अपने आप को रसिया बनाया हुआ है इन चीजों का, और खामखा की। तो फरमाते हैं कि पांचवा ये कि गरीबों के साथ ज्यादा बैठे। ठीक है, यानी अपना उठना बैठना जो है ना वो जरा मलंगों के साथ रखे। मलंगों से मुराद वो नहीं है जो कि आधा नंगा आधा 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 वली, वो वाले मलंग नहीं, बल्कि जो दीन को संभाल करके रखने वाले लोग होते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, जो के बोरिया नशीन होते हैं, मदारिस के लोग। मदारिस जो है ना वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वहां पर इतनी ज्यादा अय्याशियां अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह शुरू नहीं हुई है बहुत सारे मदारिस में, बड़े शहरों के अंदर तो शुरू हो गई है लेकिन छोटे जगहों पर और छोटे शहरों के अंदर अभी भी। तो गरीब गुरबा जो है आपको मदारिस के अंदर सबसे ज्यादा, और जो कि दीनदार गरीब भी होते हैं, वरना तो झोपड़ियों में चले जाएं वहां पे भी टीवी चल रहा होता है ना, झोपड़ियों में रह रहे हैं, कच्ची आबादी में रह रहे हैं, लेकिन गुनाह का पूरा साजो सामान वहां पे मौजूद होगा, राइट। तो ऐसे गरीबों के साथ बैठने के लिए कोई नहीं कह रहा। ठीक है, जिनके घरों के अंदर जो है वो इंडियन फिल्मों के गाने चल रहे हो और फहाशी और ओरियानी चल रही हो, बेपर्दगी चल रही हो, उन गरीबों के पास बैठने के लिए कोई नहीं कह रहा। ठीक है, नेक दीनदार गरीबों के पास बैठे। ठीक है, तो इससे भी जो है ना वो माल की मोहब्बत कम होती है, मालदारों से कम मिले। ठीक है, ये उनकी गुड बुक्स में शामिल हो करके रहना, और अपने जो है वो हमारे यहाँ क्या मिजाज बना होता है कि जी वो विजिटिंग कार्ड्स का जो जमाना था, अब तो विजिटिंग कार्ड्स का जमाना खत्म हो गया है, लेकिन पहले लोग जो है ना कि अपने वॉलेट के अंदर विजिटिंग कार्ड्स रखते थे कि जी मैं इससे क्या होता था, अपने दोस्तों को दिखाते थे, अपने दोस्तों को कि जी मैं उनको भी जानता हूँ, वो भी मेरे मिलने वालों में से हैं, वो भी मेरे मिलने वालों में से हैं, तो मेरे पास देखो उनका भी कार्ड है, मेरे पास उनका भी कार्ड है, मेरे पास उनका भी कार्ड है। तो विजिटिंग कार्ड अपने वॉलेट्स के अंदर जमा करके रखते थे। आजकल जो है वो उनके कॉन्टैक्ट्स अपने एड्रेस बुक के अंदर जमा करके रखना, यानी दुनिया की मोहब्बत जिसको कहते हैं ना, कूट कूट के भरी हुई है, कूट कूट करके दुनिया की मोहब्बत हमारे सीनों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर, हमारे रगो रेशे के अंदर भरी हुई है, और यही हम अपनी औलादों में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, अपनी औलादों में यही दुनिया की मोहब्बत हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो माल से मोहब्बत होगी तो मालदारों से भी मोहब्बत होगी, क्योंकि मालदारों से मिलने से चीजों की हवस पैदा होती है। छठा ये कि जिन बुजुर्गों ने दुनिया से बेरग़बती इख्तियार की है, उनके किस्से और हिकायतें मुतालिया किया करे। ठीक है, ये जो किस्सा कहानी पढ़ना है इबरत की नीयत से, हिदायत की नीयत से, ठीक है, ये इंसान के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर डालता है, बहुत ज्यादा असर डालता है। हमारे खालिक का जो कलाम है, जिसने हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को बनाया है, हमारी हमारे इस सोचने के निजाम को बनाया है, हमारे इस फिक्र के निजाम को बनाने वाला अल्लाह ताला है ना, तो अल्लाह ताला ने अपने इस कुरान मजीद के अंदर क्या रखा है सबसे ज्यादा? किस्से, कहानियां, मूसा अलैहि सलाम की सबसे ज्यादा, ठीक है, फिर उसके बाद यूसुफ अलैहि सलाम का पूरा किस्सा, और फिर उस बाकी कितने सारे हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर के, है ना, आदम अलैहि सलाम और शैतान वाला किस्सा, फिर वहां से जो है वो हाबील और काबील वाला किस्सा, ठीक है, फिर नूह अलैहि सलाम का किस्सा, और जगह जगह एक ही किस्से को बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या टाइम पास कर रहे हैं खाली, क्या कर रहे हैं अपने कुरान मजीद के अंदर? अल्लाह ताला को पता है कि मेरे बंदों के ऊपर जिनको मैंने डिजाइन किया है, उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर जो है वो इन वाकयात का पड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से इनके जो बुजुर्गों की हिकायतें और किस्से होते हैं, उनको पढ़ने से भी दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है। सातवां ये कि जिस चीज से दिल को ज्यादा लगाव हो, उसको खैरात कर दे या बेच दे, अपने से जुदा कर दे, यानी तो इंशाअल्लाह ताला इन तदबीरों से दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी, और दिल में जो दूर दूर की उमंगें पैदा होती हैं कि यूं जमा करें, यूं सामान खरीदें, यूं औलाद के लिए मकान और जायदाद छोड़ जाएं, जब दुनिया की मोहब्बत जाती रहेगी तो ये उमंगें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये उमंगें ही होती हैं हमारे दिलों में, जो ख्वाहिशात होती हैं ना, तमन्नाएं होती हैं, यही चीजों को ट्रिगर करती हैं, ये हमारे अफआल को ट्रिगर करती हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारे हजरत जो है वो एक शेर को अक्सर नकल किया करते हैं, तेरी दुआ से कजा तो बदल नहीं सकती, तेरी दुआ से कजा, यानी जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए फैसला किया हुआ है ना, वो फैसला तो तेरी दुआ से बदल नहीं सकता, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए, क्योंकि इंसान दुआ भी किस चीज के लिए करता है? जिसकी उसको तमन्ना होती है। ठीक है, तो अगर तू किसी बेफायदा चीज के लिए दुआ कर रहा है, ये किसी नुकसानदेह चीज के लिए दुआ कर रहा है, ठीक है, जैसे कोई नौजवान जो है वो किसी फिल्म एक्ट्रेस, किसी ड्रामा एक्ट्रेस जो बड़ी खूबसूरत उसको लगती है, उसके लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह ये मुझे मिल जाए, ए अल्लाह मुझे ये मिल जाए, या अगर थोड़ा बहुत शरीफ है तो कहता है या अल्लाह मेरी इससे शादी करवा दे। ठीक है, तो अगर उस किस्म की एक्ट्रेस से उसकी शादी हो गई तो वो एक्ट्रेस तो फिर उसको गुनाहों के रास्ते के ऊपर डालेगी ना। ठीक है, जैसी जिंदगी वो गुजार रही है तो वो इसको भी उसी रास्ते के ऊपर चलाने की भरपूर कोशिश करेगी। ठीक है, तो ऐसी दुआएं मांगने से क्या होता है, फरमाते हैं शायर साहब कि मगर इससे ये मुमकिन है कि तू बदल जाए, तेरी दुआ से कजा तो बदल नहीं सकती, मगर इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए, तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए, यानी तेरी जो ख्वाहिशें हैं ना, तेरी जो तमन्नाएं हैं वो फायदेमंद चीजों के लिए लग जाए, और तू दुआ जो है वो फायदेमंद चीजों के लिए अल्लाह ताला से मांगना शुरू कर दे, ना ये कि नुकसानदेह और बुरी चीजों के लिए। तो ख्वाहिशात का बदलना जो है ना, यही असल तब्दीली होती है इंसान की जिंदगी के अंदर। ठीक है, अगर हमारी ख्वाहिशात नहीं बदली बल्कि कुछ हमने सांप की तरह केंचली बदल ली, ठीक है, ऊपर ऊपर से जो है वो बस अपना जाहिर बदल लिया और हम नेकों की सोहबत में तो आ गए, लेकिन अंदर से जो है ना वो दुनिया की मोहब्बत हमारे अंदर अभी भी है, ठीक है, या ये कि नेकों के पास बैठ भी रहे हैं तो वो भी दुनिया ही की तलाश में बैठ रहे हैं, ठीक है, कि भाई इनके पास बैठेंगे तो इज्जत मिलेगी, दुनिया की इज्जत, इनके पास बैठेंगे तो कोई कोई किसी किस्म का मसला हल हो जाएगा हमारा दुनिया का, ठीक है। तो दिल की आरजू तो वही है ना, तो अल्लाह की तमन्ना, अल्लाह को पाने की तमन्ना, या आखिरत के अंदर जो है वो जन्नत हासिल करने की तमन्ना, अगर ये दिल के अंदर नहीं आई तो फिर तो नेकों की सोहबत भी फायदेमंद नहीं हो सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अच्छी सोहबत किसी की भी नहीं हो सकती, और इस सोहबत के अंदर मुनाफिकीन मदीना आकर के बैठा करते थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि दिल अंदर से गंदा था और आखिरत की तलब नहीं थी, अल्लाह की तलब नहीं थी बल्कि दुनिया की तलब थी, तो इस वजह से वो सबसे ज्यादा बदतरीन लोग ठहराए। दुनिया की मोहब्बत और उसका इलाज मुकम्मल हुआ। किसी को कोई सवाल है या कोई कमेंट है तो आप पूछ लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं कंजूसी और उसका इलाज। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहुत से हक जिनका अदा करना फर्ज और वाजिब है, जैसे ज़कात, कुर्बानी, किसी मोहताज की मदद करना, अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, कंजूसी में ये हक अदा नहीं होते, उसका गुनाह होता है, ये दीन का नुकसान है, और कंजूस आदमी सबकी निगाहों में जलील और बेकदर रहता है, ये दुनिया का नुकसान है, ठीक है। यानी हुकूक अदा नहीं करता, तो हुकूक अदा नहीं करने का मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला के यहाँ ये मुजरिम होता है, ठीक है, कहीं पे खर्च करना था, जरूरत थी, ठीक है, हक था औलाद का कि उसके ऊपर खर्च किया जाए जायज जरूरियात को पूरा करने के लिए, ठीक है। जायज जरूरियात क्या होती हैं? उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके जो है वो जिस्मानी सेहत का इंतजाम, उनकी नफसियाती सेहत का के ऊपर खर्च करना, ठीक है, उनकी रूहानी सेहत सबसे ज्यादा अहम, उसके लिए भी खर्चे की जरूरत पड़ती है, कि बच्चों को कहीं मदरसे में एडमिशन दिलवाना, बच्चे को जो है वो किसी अच्छी जगह पे ले करके जाना, नेकों की सोहबत में ले करके जाना, तो भाई वो सफर भी जो है वो खर्चे से होता है ना, ठीक है, और उसके लिए जो है वो अच्छी किताबें लेकर के आना, अब इसके पास पैसे हैं तो, लेकिन ये अच्छी किताबें खरीद के लाने के ऊपर खर्च नहीं करता, ठीक है, तो ये हुकूक मार रहा है अपनी औलाद के। उसी तरह बीवी का जो जो जायज जरूरियात होती हैं, ठीक है, बीवी की भी रूहानी जरूरियात होती हैं, बीवी की भी नफसियाती जरूरियात होती हैं, बीवी की भी जिस्मानी जरूरियात होती हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर ये खर्च नहीं करता, तो इसको कंजूसी कहते हैं। तो कंजूसी से जो है वो दीन का नुकसान, आखरत का नुकसान, और फिर उसके बाद ये कंजूस शख्स जो होता है ना, वो लोगों की निगाहों में जलील और बेकदर हो जाता है, तो ये उसका दुनिया का नुकसान भी हो गया, कि कोई दिल से उसकी इज्जत नहीं करना चाहता। इसका इलाज एक तो ये है कि माल और दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाले, जो कि पीछे बड़ी तफसील के साथ हम पढ़ चुके हैं, जब उसकी मोहब्बत ना रहेगी तो कंजूसी किसी तरह हो ही नहीं सकती। दूसरा इलाज ये है कि जो चीज अपनी जरूरत से ज्यादा हो, तबीयत पर जोर डालकर वो किसी को दे दिया करे, ठीक है, अगरचे नफ्स को तकलीफ हो मगर हिम्मत करके इस तकलीफ को बर्दाश्त कर ले, जब तक कंजूसी का असर दिल से बिल्कुल ना निकल जाए, इसी तरह करता रहे, ठीक है। तो बड़ा सादा सा, अगरचे के मुश्किल इलाज है, सादा सा ये इलाज क्यों कह रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई मुराकबे नहीं बताए, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने कोई मुराकबे नहीं बताया कि भाई यहाँ से फैज आ रहा है और इधर जा रहा है और वहां से निकल के उधर से निकल रहा है और है ना फलानी चीज आप सोच रहे हैं और फलाना, नहीं, ये समझ में नहीं आती, खुसूसन खवातीन को अक्सर मुराकबे वगैरह समझ में नहीं आ रहे होते, ठीक है, बड़ा सादा सा सिंपल, कि भाई जो चीज आपके कंजूसी का सबब बन रही है ना, उस चीज को जो है वो अपनी जिंदगी से दूर करने की कोशिश करें, ठीक है। शोहरत पसंदी और उसका इलाज। जब आदमी के दिल में शोहरत की ख्वाहिश होती है तो दूसरे शख्स के नाम और तारीफ से जलता है और हसद करता है, यानी दूसरा शख्स जो है वो अगर उसको शोहरत मिली हुई है तो इसको जो है ना फिर वो तकलीफ होती है और ये हसद करता है। हसद का मतलब क्या, पिछले पेज के ऊपर हमने पढ़ा भी था कि उस शख्स की नेमत के जवाल से खुश होना, इसको हसद कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई और मशहूर हुआ हुआ है तो इसके दिन में ये तमन्ना होती है कि ये शोहरत उसके पास से खत्म हो जाए और वो लोगों की निगाहों में गिर जाए। ठीक है, तो ये इसकी अपनी शोहरत पसंदी का नतीजा होता है इसके अंदर, कि दूसरों की शोहरत उसको बुरी लग रही होती है। दूसरे शख्स की बुराई और जिल्लत सुनकर खुश होता है। ये भी बड़े गुनाह की बात है कि आदमी दूसरे का बुरा चाहे, और इसमें ये बुराई भी है कि कभी नाजायज तरीकों से नाम पैदा किया जाता है। ठीक है, तो ये खुसूसन जो है ना, ये वाली जो बुराई अगर समझ में ना आ रही हो कि भाई ये कैसे हो सकता है, किसी को दूसरों की इतनी ज्यादा परवाह कैसे हो सकती है कि उसकी शोहरत बुरी लग रही हो, तो भाई हो सकती नहीं है बल्कि होती है। अगर खुसूसन अगर आपको देखना हो जो कि इबरत की निगाह से, अगर इंसान कोई देखे ना, वो दुनियादारों की जिंदगी को देख लें। ठीक है, ये जो सियासतदान होते हैं, ये हर वक्त दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना और उनकी जो है ना वो बुराई मास मीडिया के ऊपर आकर के करना, ठीक है, तो ताकि लोगों की पॉपुलैरिटी जो है ना वो कम हो जाए, दूसरे जो इनके फरीक होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए और वो जो है वो फौज की नजरों, हमारे मुल्क के अंदर असल में हुकूमत फौज की वजह से बनती है, ठीक है, तो वो फौज की निगाहों में गिर जाए और जो है वो जो ढकोसले का एक इलेक्शन होता है, ठीक है, तो ढकोसले के इलेक्शन में भी जो है ना वो उनके वोट्स कम हो जाए, लोगों के अंदर उनकी मकबूलियत कम हो जाए। तो इस वजह से हर वक्त जो है वो बुराई, दूसरे की बुराई है ना। बल्कि एक साहब तो आए थे, उन्होंने अपने हुकूमत के दौर में और कुछ किया ही नहीं सिवाय बुराई करने के, बाकी दूसरे लोग जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है वो कुछ मुस्बत काम करते थे और बाकी जो है बुराई के अंदर अपना वक्त लगाते थे। एक साहब आए, उन्होंने बुराई के अलावा और कुछ किया ही नहीं, है ना, उनकी तकरीर शुरू जो है वो होती थी और खत्म भी इसी के ऊपर हो जाती थी। ठीक है, तो इतना ज्यादा, और ये शोहरत पसंदी। ठीक है, तो फिर बाकी आप देख लें फिल्म, ये जो मीडिया वाले लोग होते हैं, यानी ये जो क्या कहते हैं शो बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, बहुत ही खलीस किस्म की इनकी जो जो प्राइवेट लाइव्स वगैरह होती हैं और इनके जो 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 इनकी रिपोर्टिंग्स वगैरह आ रही होती हैं अखबारों के अंदर, वो यही कीचड़ उछालना। ठीक है, स्कैंडल्स भी जो है वो बनाते हैं या बनवाते हैं और दूसरों के, मतलब यही सारा चल रहा होता है, यानी इंतहाई गंद और गलाजत से भरी हुई जिंदगी होती है। तो फरमाते हैं कि ये यानी दूसरों की बुराई और जिल्लत सुन करके और करके ये खुश हो रहे होते हैं। अच्छा, और उसमें ये बुराई भी है कि कभी नाजायज तरीकों से नाम पैदा किया जाता है, मसलन शोहरत के लिए शादी वगैरह में खूब माल उड़ाया, फजूल खर्ची की, और वो माल कभी रिश्वत से जमा किया, कभी सूदी कर्ज लिया। तो शादी ब्याह के अंदर सबसे ज्यादा फिक्र पड़ी हुई होती है कि जी इनकी जो है ना नाक ना कट जाए। ठीक है, इनको जो है वो लोग जो है वो कुछ बुरा ना समझना शुरू कर दें और कमतर ना समझना शुरू कर दें, तो इस वजह से शादी ब्याह के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा, ऐसा वाला खर्चा करते हैं जो कि दूसरों को नजर आए। ये नहीं करते कि औलाद को जो है ना वो माल पैसा दे दें ताकि उनकी आगे वाली जिंदगी जो है वो थोड़ी सहूलत वाली हो जाए। ठीक है, कि बेटी को जो है वो विरासत में हक दे दिया या बेटी को जो है वो तोहफे तहाइफ में इतना माल दे दिया कि वो अपने पैर के ऊपर जम सके, उसको जो है वो कैरियर बनाने की फिक्र ना हर वक्त पड़ी रहे कि कल को खुदा ना खास्ता मेरा शौहर मर गया या मुझे तलाक हो गई तो मैं खाऊंगी कहाँ से। राइट, भाई बाप है, बाप ने इतना कमाया है, उसके पास इतना कुछ मौजूद है, तो वो अपने बेटे को क्यों नहीं खिलाएगा, वो अपने बेटे को क्यों नहीं सपोर्ट करेगा, उसको हर वक्त इस बात की क्यों फिक्र पड़ी पड़ी रहे कि मैं खाऊंगी कहाँ से और मुझे कौन सपोर्ट करेगा। ठीक है, और बेटे को जो है वो आप कुछ उसके लिए भी इंतजाम ऐसा करें कि उसकी यानी आदतें भी खराब ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो दुनिया के जो 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 चक्की होती है उसके अंदर भी हर वक्त पिसता ना रहे ना। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर आप खर्च करें, अल्लाह ने आपको माल दिया है, लेकिन नहीं बस वो क्या कहते हैं उसको यानी सेलिब्रेट करना और उसके ऊपर क्या कहते हैं उसको वो जो फुलझड़ियां छोड़ते हैं आजकल, आजकल छोटी फुलझड़ियां नहीं होती ना, आजकल बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, यानी फायरिंग कर रहे होते हैं, और क्या कहते हैं, फायरवर्क्स, फायरवर्क्स है ना, अपनी शादी को दिखाना। और यानी इस तबके के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरा मामला चल रहा होता है। दीनदारों को कम से कम अपने आप को उनसे बचा कर ये रखना चाहिए इन चीजों से। तो फरमाते हैं कि फिर इस खर्चे को पूरा करने के लिए रिश्वत से माल जमा किया, सूदी कर्जा लिया, ये सारे गुनाह इसी शोहरत के शौक की बदौलत हुए। और दुनिया का नुकसान इसमें यह है कि ऐसे शख्स के हासिद और दुश्मन बहुत होते हैं। ठीक है, जितना आप अपने आप अपने इन नेमतों का यानी इजहार करेंगे, ठीक है, तो उतना ज्यादा जो है ना वो हासिद और दुश्मन पैदा होंगे, और हमेशा उसको वो जलील और बदनाम करने और उसको नुकसान और तकलीफ पहुंचाने की फिक्र में लगे रहते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारे बुजुर्गों के यहाँ एक और भी जुमला बड़ा मशहूर है कि यानी हमारे हजरत फरमाते हैं कि हमारे बड़ों ने हमें छुपना सिखाया, हमारे बड़ों ने हमें छुपना सिखाया, छपना नहीं सिखाया। छपना, छपने का मतलब क्या होता है कि जहां जो है ना वो कोई चीज कुछ कर लिया, कोई अचीवमेंट कर ली, या कोई तहरीर जो है वो लिख ली, है ना, फौरन जो है ना वो उसको वायरल करने के ऊपर, आजकल वायरल का लफ्ज इस्तेमाल होता है छपने के लिए। ठीक है, अपने नाम को जो है वो खूब उसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट करके उसको अखबारों के अंदर छपवाना या किसी और जगह पर छपवाना है, उसके अंदर अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, सेल्फ प्रोजेक्शन। हालांकि वो काम जो है वो इतना ज्यादा कोई फायदेमंद नहीं किया हुआ होता, ठीक है, लेकिन छपने का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो छपने का जब शौक होता है ना, तो फिर ऐसे शख्स जो होता है उसके दुश्मन और हासिदीन भी बहुत ज्यादा आसानी के साथ पैदा हो जाते हैं और फिर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जहां जरूरत है छपने की तो वहां पर इंसान छपे, जरूरतन छपे, आदतन या शौकियन यानी शौकिया जो है ना वो ना छापे अपने आप को। उसका इलाज ये है कि ये सोचे कि जिन लोगों की निगाह में नामवरी और तारीफ होगी ना वो रहेंगे और ना मैं रहूंगा, थोड़े दिनों के बाद कोई पूछेगा भी नहीं, तो ऐसी बेबुनियाद चीज पर खुश होना नादानी की बात है। ठीक है, ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा गफलत में और बहुत ज्यादा यानी धोखे में उतरना है कि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे ना तो हमें लोग याद करेंगे, हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमें लोग याद करेंगे, ये बहुत बड़ा धोखा है, हमें कोई याद नहीं करेगा। जब तक उनकी जरूरत हमारे साथ अटकी रहेगी उस वक्त तक तो वो याद कर लेंगे, मजबूरन याद करना पड़ेगा उनको, ठीक है, लेकिन जब उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी ना हमसे, तो फिर वो हमें नहीं याद करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम उन लोगों को याद नहीं करते जो हमें छोड़ के चले गए हैं इस दुनिया से, राइट, हमें वो कितना याद आते हैं, दिन में कितना याद आते हैं, हफ्ते में कितना याद आते हैं, जो कि दुनिया से जा चुके हैं, अपनी कब्रों के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो भाई अगर यानी ये कोई ये नहीं है कि जो हमें याद नहीं करेगा वो बुरा इंसान होगा, भाई ये इंसान की तबीयत है, इंसान निस्यान से बना, लफ्ज इंसान ही निस्यान से बना, ठीक है, यानी भूल, तो हर इंसान जो है वो भूल जाता है। ठीक है, तो जिस तरह हम दूसरों को भूल गए तो दूसरे हमें क्यों नहीं भूलेंगे, वो भी तो इंसान ही है ना। ठीक है, तो दूसरों की याद में रहने की जो 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 शौक इंसान को लगा होता है ना कि मैं दूसरों की याद में रहूं, इसकी हकीकत में कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, एक अल्लाह है कि जो कि भूलता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि भूलना जो है ये नुक्स है और ये नुक्स इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला नुक्स से पाक है, अल्लाह ताला नहीं भूलते। तो इंसान को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को याद करने की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो इसके बदले में हमें याद करते हैं अच्छी तरीके से, वरना तो अल्लाह ताला किसी को भी भूलते नहीं है। जो जहन्नुम के अंदर अल्लाह ताला के बंदे मौजूद होंगे ना, अल्लाह ताला तो उनको भी नहीं भूलते, तो जन्नत वालों को कैसे भूल जाएंगे। ठीक है, फर्क सिर्फ ये है कि उनको अच्छी तरीके से याद करना या बुरी तरीके से याद करना। जहन्नुम वालों को जो है वो अजाब के तरीके से अल्लाह ताला याद रखेंगे, और जन्नत वालों को अल्लाह ताला सवाब के जरिए से याद रखेंगे। ठीक है, तो एक अल्लाह ही है कि जिसको कुछ नहीं भूलता, तो हम अल्लाह ताला के याद में अच्छे, फस्कुरुनी अज़कुरकुम, अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में ऐलान भी फरमा देते हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। ठीक है, फस्कुरुनी अज़कुरकुम, ठीक है, मैं तुम्हें याद करूंगा, यानी अच्छे तरीके से याद करूंगा। हाँ, अगर कोई अल्लाह ताला को शिकायतों के साथ याद कर रहा है, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, और अल्लाह ने मुझे ये क्यों ना दिया, और अल्लाह ताला ने मुझे कोई बुराई क्यों दे दी, यह है बुरे तरीके से अल्लाह को याद करना, तो अल्लाह ताला के यहाँ फिर इसको भी रेसिप्रोकेट किया जाता है, फिर अल्लाह ताला भी बुरे तरीके से याद करेंगे ऐसे शख्स को। ठीक है, तो अल्लाह ताला को एहसान के साथ याद करें, अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं, ठीक है, उनके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए, तो अल्लाह ताला फिर हमें अच्छे तरीके से याद करेंगे। बंदों ने नहीं याद करना, ठीक है ना, अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को तो वैसे ही कुछ याद नहीं रहता, अगर दरमियानी उम्र के आपकी औलाद है और आपके ऊपर वो डिपेंडेंट थी, तो आपके मर जाने के बाद वो थोड़े दिनों तक आपको याद करेंगे, जब तक कि उनके लिए ऑल्टरनेटिव नहीं पैदा हो जाते। जिस दिन उनके पास ऑल्टरनेटिव आ गए ना, वो अपनी इतनी लाड प्यार करने वाली माँ को भी भूल जाएंगे, क्योंकि वो इंसान है आखिर, वो भी इंसान है। ठीक है, ये सारी बात क्यों की जा रही है, ताकि हमारा दिल उचाट हो जाए और हमारा दिल अल्लाह से लग जाए। ये सिर्फ नहीं कि इंसान से उचाट हो जाए और फिर मायूसी की किसी दलदल के अंदर गिर जाए और मर जाए मायूस होकर के, नहीं, मकसद इसका ये है कि अल्लाह के साथ दिल जुड़ जाए। ठीक है, किसी को कोई सवाल है या कमेंट है तो पूछ लें, वरना हम यहाँ पे ये वाली क्लास रोक करके प्रैक्टिस क्लास शुरू करते हैं चंद मिनटों के ब्रेक के बाद।